आप सबको प्रणाम है। आज हम गीता के 13वें चैप्टर के 18th पाठ है। मेरे साथ मिलकर के बोलिए, य एवं वेत्ति पुरुषम, वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। दोबारा, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। He who understands the self and the prakriti, thus with its modes, gunas like sattva, rajas, tamas, is not born again in whatever state he may be placed. जो व्यक्ति ये 13वें चैप्टर में जिसकी चर्चा हुई, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और जड़ और चेतन, ये संसार और परमात्मा, ये शरीर और आत्मा, कोई भी चीज उठाकर देखिए, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक में कॉन्शसनेस है, एक मैटर है। ये संसार मैटेरियल है पर उसके कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। ये शरीर जड़ है पर इस जड़ शरीर को चलाने वाला आत्मा है, दो चीजों से बना है। ये दो को जो अलग अलग समझ लेता है, ठीक ठीक रूप से समझ लेता है, अनुभव कर लेता है, जान लेता है, और प्रकृति के उसके गुणों के साथ जो जितने भी उसके मॉडिफिकेशंस हैं मैटर के, उन मॉडिफिकेशन के साथ जो समझ लेता है, वो इस संसार में हर कहीं भी होने पर भी दोबारा पैदा नहीं होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। हर कहीं होने पर भी वो बिजनेस करता हो या घर में रहता हो, वो शादीशुदा हो या जंगल में रहता हो, वो शराब खाने में बैठा मिले या सुधा खाने में बैठा मिले, कहीं भी बैठा हुआ मिले, वो अंदर से शुद्ध पवित्र निर्मल होता है। सब कुछ करते हुए भी ऐसा व्यक्ति जो रियलिटी को जान लेता है, जो सत्य को जान लेता है, वो सब कुछ करता हुआ भी मुक्त होता है, वो सब चीजों से मुक्त होता है। दूसरे लोग कुछ ना करते हुए भी सब जगह चिपके होते हैं। एक व्यक्ति है जो हर चीजों को भोगता है पर उस किसी चीज से उसके अटैचमेंट नहीं है, ना उससे उसको कोई परवाह है, ना कोई केयर है कि जो भोग रहा है वो अच्छा है बुरा है, उसको और चाहिए नहीं चाहिए। दूसरा है, लाइफ में कुछ भोगा भी नहीं है पर हर चीज के साथ चिपका हुआ है। लाइफ आज भी जे मर जाए तो भी इन्हीं चीजों के साथ मरेगा, जिनको भोगा जिनको नहीं भोगा। दुनिया संसार दो चीजों से बना है और संसार के अंदर मैं भी दो चीजों से बना है। इसको जो ठीक ठीक समझने का अर्थ नहीं कि आपने गीता पढ़ी समझ में आ गई, उपनिषद पढ़ा तो आपको समझ में आ गई, आपने कहीं से प्रवचन सुना तो आपको समझ में आ गया, ये समझ नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग तो बड़ी ऊपरी लेवल पर होता है, बहुत मोटी मोटे रूप में मोटी बुद्धि का दिमाग होता है, ये दिल से नहीं उतरता है। जब तक वो दिल में ना उतरा हो, जब तक वो हमारे अंदर हमारे अनुभव का, हमारे रियलाइजेशन का सब्जेक्ट ना बने, तब तक तो वो ऊपरी ऊपरी ही उड़ता रहता है। कितने भी आप किताबों के हम ज्ञानी बन जाएं किताबों को पढ़ के, पर अगर जीवन में धरातल पर जमीन के नीचे अगर वो ना जाएं तो वो फिर बेकार होता है, उल्टा कभी कभी नुकसान करता है। आपको पता है आजकल क्लाइमेट चेंज के कारण काफी सारे जगह मौसम बदल जाता है। जहां पहले बहुत बारिश होती थी, जैसे भारत में आसाम वगैरह में, जहां 4-5 महीने के बारिश में इतनी साल भर बाढ़ रहता था, अब वहां धीरे धीरे सूखा पड़ने लगे, राजस्थान के रेगिस्तान वगैरह में बाढ़ आने लगे। ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं इस टॉपिक में, हमने सुना कि जो राजस्थान में जो रेगिस्तान बाड़मेर बीकानेर वगैरह में थार एरिया में जहां बारिश अब होने लगी है थोड़ी थोड़ी, थोड़ा सा एक दो दिन बारिश होती है तो पानी इतना जाम होता है कि महीनों तक वो कहीं नहीं जाता है। और जहां बाढ़ एरिया है वहां पानी आता है, धमाधम बारिश होती है, आदमी 6 फुट 7 फुट तक पानी हो जाता है, अगले 2-3 दिन में साफ हो जाता है। क्यों? अगर पानी जमीन के नीचे ना जा रहा हो तो ऊपरी ऊपरी रहे, अगर मिट्टी की ऐसी नेचर नहीं बनी है किसी किसी एरिया का जहां पानी नीचे जा सके तो वो नुकसान करता है, वो फिर प्रलय लाता है, वो फिर बाढ़ लाता है, वो फिर नुकसान करता है। जैसे कि बाढ़ किसी के लिए अच्छा है पर रेगिस्तानी लोगों के लिए ये बारिश ज्यादा हो जाना मुश्किल है कि पानी सोखता नहीं है। आजकल जो दुनिया में बड़ा उपद्रव आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो बहुत लोग हिंसक होते जा रहे हैं, उसका मूल कारण है कि पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए। और पढ़े लिखे लोग बढ़ गए और ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनके अंदर नहीं उतरा है, सिर्फ गले तक पढ़ाई उतरी है, यूनिवर्सिटी से लेकर के मदरसा तक या गुरुकुल तक, जो हम पढ़ाई करते हैं वो कहीं जीवन में नहीं उतरा, ये मेरे लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाया, मेरे दिल के अंदर कोई बदलाव नहीं लाया, सिर्फ दिमाग के ऊपर बोझ बढ़ा। और जो मेरा इंटेंशन बना कि या तो मैं अपने ज्ञान से दुनिया बदल डालूं या मैं मार डालूं, जो बदल नहीं पाते वो मार डालते हैं या कुछ लोग बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्ञान अंदर उतरा नहीं है। इसीलिए मेरी और आपकी भी यही दशा हो सकती है, अगर हम सिर्फ पढ़े और दावा करते फिरे कि हम जानते हैं कि आत्मा ये है, प्रकृति ये है, पुरुष ये है, और जो नहीं मानते उनके पीछे हम हाथ धो के पड़ जाएंगे। हमने एक कहानी सुनी थी, एक संत बड़े महात्मा थे, साधु थे, तपस्वी व्यक्ति थे। उनके गांव में एक बिगड़ा हुआ लड़का था, बिगड़ा हुआ मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, आवारागर्दी करता था, शहर में इधर उधर घूमता था, लोगों को तंग करता था, टीज करता था। तो उसकी मां ने जाकर के साधु से कहा कि आप इतने बड़े साधु हैं, मेरे बच्चे को भी कुछ अच्छा कर दीजिए, वो बिगड़ा हुआ है, अकेला बेटा है, सुधरता नहीं है, कुछ कर लीजिए। साधु ने कहा ठीक है, उस बच्चे को बुलाया, बोले देखो सुबह सुबह मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूं प्रार्थना भजन कीर्तन करने के लिए, साधना करने के लिए, कल से तुम मेरे साथ चलना, पर ध्यान रखो सुबह 5 बजे 5:30 बजे चलते हैं हम, सूरज उगने से पहले। तो अब ठीक है, इतने बड़े साधु ने कहा है तो मान करके लड़का सुबह सुबह उनके साथ चल पड़ा। मंदिर में गए, अपना जो भी भजन कीर्तन साधु ने किया, लड़का इधर उधर देखता रहा, बैठा रहा। 2-4 दिन वो गया, जाने के बाद एक दिन वापस आ रहा था। महीनों बीत गए ऐसे जाते जाते, दोनों एक दिन वापस आ रहे थे। अब सूरज खिल चुका था, 6-7 बजे का टाइम था, पूरी तरह धूप निकल चुका था, बहुत सारे लोग, कोई ब्रश कर रहा था घूमते फिर, कोई घूम फिर रहा था, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा था। आपको पता है भारत में लोग खुले में भी सोते हैं, कुछ लोग सो रहे थे अभी भी छत पर इधर उधर, कोई बैठे बैठे बातें कर रहे थे। लड़के ने साधु जी से कहा, महाराज देखिए दुनिया कितना पापी है, सुबह हो गया, नहाना धोना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, देखो सब सोए पड़े हैं, कोई दातुन कर रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कितने पापी हैं, सब नरक जाएंगे। साधु ने कहा पता नहीं ये लोग नरक जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं तो जरूर नरक जाऊंगा। बोले क्यों, आप तो बड़े महात्मा आदमी है। महात्मा होने से क्या है, तुम्हारा जैसा आदमी बिगड़ा हुआ था, जो भी था, आवारागर्दी करता था, कुछ भी करता था, पर तू इतनी घमंडी तो नहीं था ना, घमंडी समझते, इतना एरोगेंट तो नहीं था ना, इतना ईगो तेरे अंदर नहीं था, ये एक महीने क्या तू मंदिर जाने लगा, तुझे सारी दुनिया पापी दिखाई देने लगा है। ये मैंने तुम्हें बदल तो नहीं पाया, तुम्हें और बिगाड़ दिया। अब तू घमंडी बनेगा, अब तू पब्लिक को मूर्ख बोलेगा, दुनिया को पापी बोलेगा, क्योंकि तू पूजा करता है, तू प्रार्थना करता है, तू मंदिर जाता है। ये मेरे से बड़ा पाप हुआ। देवियों सज्जनों, जब किताब पढ़ के आपको ज्ञान होने लगे तो दुनिया आपको मूर्ख लगे, जब मंदिर जाकर के आपको धार्मिकता का एहसास होने लगे कि मैं बड़ा धार्मिक हूं क्योंकि मैं जप करता हूं, तप करता हूं, पूजा करता हूं, वगैरह वगैरह करता हूं, और जो नहीं करते सब पापी हैं, तो समझ लीजिए हम बड़े ज्यादा अंधेरे में पड़े हुए हैं। पता नहीं कोई नरक में जाए ना जाए, वो व्यक्ति तो जरूर जाएगा। कुछ और करता था, नहीं करता था, घमंड और बढ़ गया, गर्व और बढ़ गया, अहंकार और बढ़ गया। इसीलिए शास्त्र उसकी बात नहीं करते कि तुम किताब पढ़ के क्या समझे हो, किसी से सुन के क्या समझे हो। शास्त्र उस समझ की बात करते हैं जो तुम्हारे दिल में उतरा है, जो तुम्हारे जीवन में उतरा है, जो तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे कैरेक्टर में दिखता है, जो तुम्हारे बिहेवियर में दिखता है, वो ज्ञान ज्ञान है। बाकी तो थोता है, पैसा कमाने का, नाम कमाने का, पब्लिक को उल्लू बनाने का, पब्लिक को छोटा समझने का तरीका है। अब वो ज्ञान जिस दिन आपको आ जाए, जब आपको ये समझ आ जाए कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, ईश्वर और संसार में क्या अंतर है, तो फिर आप कहां बैठे हो ये फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो ये फर्क नहीं पड़ता, क्या खाते हो ये फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी हाल में अंदर से मुक्त होते हो, क्योंकि आप अंदर से पवित्र हो चुके हो। बाहर के व्यवहार देख करके तो दुनिया पहचानती है कि अच्छा है बुरा है, और उसी का रिजल्ट है, क्योंकि बाहरी व्यवहार से हम लोगों को पहचानने की कोशिश करते हैं, और उसका रिजल्ट होता है कि दुनिया हिपोक्रेसी से भरती जा रही है। जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, जितने सिविलाइज्ड होते जाते हैं, उतनी हिपोक्रेसी फैलती है, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया सामने कैसे बोलना है, दूसरे के सामने मुंह कैसे करना है, दूसरे के सामने कैसे मुस्कुराना है, अंदर कुछ भी चले। पूरी शिक्षा का, पूरी एजुकेशन का जो लाइफ में चेंज आया, जो प्रोफेशन में चेंज आया, वो तो दिखता है। गरीब आदमी पैसा वाला बन गया, जिसका कोई नहीं जानता था उसको करोड़ों लोग जानने लग गए, ये तो आपकी फाइनेंशियली जो आपको फायदा मिला। आपके लाइफ में क्या बदलाव आया आपके ज्ञान होने से, सिर्फ इतना आया कि हम हिपोक्रेट बनने लगे, हम पब्लिक के सामने ड्रामा करना सीख चुके हैं। मेरे अंदर आपके प्रति कितना भी गुस्सा है, पर मैं आपके सामने मुस्कुराना सीख चुका हूं। एक अनपढ़ व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, वो ज्यादा ईमानदार दिखेगा। अगर वो दुखी है तो उसके शक्ल में वो दुख दिखेगा, खुश है तो वो दिखेगा, वो अंदर और बाहर उसका एक जैसा दिखेगा। पढ़े लिखे लोगों में मुश्किल होता है आदमी को पहचानना, उसकी वाणी को समझना, ये जो बोल रहा है वो तारीफ कर रहा है वो सच्चे की झूठ है, वो जो डांट रहा है वो सच्चे की झूठ रहे, वो जो हंस रहा है वो सच्चे की झूठ है। बड़ा मुश्किल होता है सिविलाइज सोसाइटी में ये रिकॉग्नाइज कर पाना, असली कौन है, नकली हंसी कौन है, असली रोना कौन है, नकली रोना कौन है। हम लाखों लोगों को देखते हैं अब फ्यूनरल होम में, आंसू बहाते बहाते थक जाते हैं, 5 मिनट के बाद हिसाब किताब करते हैं, बिल्कुल क्रुएलिटी के साथ हिसाब किताब में जुड़े रहते हैं। वो आया था कि नहीं आया था, वो आदमी नहीं आया था, अच्छा चलो हिसाब करते रहते हैं कौन आया कौन नहीं आया, फिर आगे उसी हिसाब से अपना डायरी मेंटेन करेंगे ना, किसकी फ्यूनरल में जाएंगे नहीं जाएंगे। अभी अभी रो रहे थे, आंसू की गंगा बह रही थी, समझ में नहीं आता है नकली आंसू है कि असली आंसू है। पढ़ लिख करके हम ये सीख गए कैसे पब्लिक में बिहेव करना है, और वेस्टर्न सोसाइटी ने इसका नाम दिया सिविलाइज्ड वे, इसी को कहते हैं मैनर। ये मैनर के नाम पर हिपोक्रेसी को हम पी गए। हिपोक्रेसी मतलब अंदर और बाहर दो अलग अलग चीजें। पर जो असलियत को समझ लेता है, जो रियलिटी को समझ लेता है, वो फिर ये सब चीजें उसके लिए मायने नहीं रखता, वो कहां बैठा है, क्या करता है, वो अंदर पब्लिक उसको किसी भी रूप में जाने, पब्लिक को ये पसंद है। कोई मुस्कुरा तो उसको लगता है ये खुश है, कोई रो रहा तो लगता है कि दुखी है, पब्लिक को नहीं पता उसके अंदर क्या है। पर वो अपने आप में वो मुक्त होता है, निर्मल होता है, साफ होता है। लाखों करोड़ों लोग ओम ओम राम राम जपते रहते हैं, उनके अंदर झांको पैसा गिनते रहते हैं, दुकान में बैठ के माला जपते रहते हैं, ग्राहक आता है पूछते हैं क्या है भाई क्या चाहिए, राम 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 जी ये चाहिए, चना चाहिए, कितना है जी, बाजार में 30 रुपए उसके वहां 40 रुपए मिलेगा जी, नहीं मिलेगा, राम 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 चलता रहता है। क्या मतलब है, सिखाया किसी ने? पब्लिक क्या समझती है, बड़ा धार्मिक है, देखो 24 घंटे माला जपता रहता है, भगवान का नाम जप, अंदर झांको कोई भगवान दूर दूर का नहीं दिखाई देगा, पैसे के अलावा घर के अलावा कुछ नहीं दिखता। जो आपके भीतर चल रहा है वो आप असलियत में है, इन रियलिटी आप वही हैं जो आपके अंदर है, जो बाहर है वो आपका असली चेहरा नहीं है, वो मेरा असली चेहरा नहीं है। हम सबका असली चेहरा वो है जो हमारे अंदर चलता है, और ईश्वर के लिए वो मैटर करता है, रियलिटी में वो मैटर करता है। इस संसार की जो सिस्टम है जिसमें आपके कर्म की काउंटिंग होती है वो आपके अंदर काउंट होता है, आप बाहर आप क्या करते हो उसकी काउंटिंग नहीं होती है। एक बहुत बड़े सन्यासी थे, बड़े कवि थे, कवि मतलब जो कविता लिखते हैं, तो उन्होंने कविता लिखी। वैसे तो बहुत सारे साधु सन्यासी महात्मा लोग कविता लिखते हैं, तो उन्होंने लिखी, अपने भक्तों को सुनाते हैं कि देखिए उन्होंने कविता लिखी, हे राजा तुम्हारा सिंहासन तुम्हारे लिए बड़ा, मेरे लिए तो वो बेकार है, मेरे लिए तो झोंपड़पट्टी तुमसे भी बड़ी है, तुम्हारे महल से भी बड़ी है, तुम्हें तुम्हारा सिंहासन मुबारक हो, मेरे लिए तो मेरी पत्तों। पर कभी आपने सुना कोई राजा कविता लिखता हो, तुम्हारी मिट्टी मिट्टी है, तुम्हें मुबारक हो, मेरा राज सिंहासन मेरा राज सिंहासन है, मुझे मुबारक है। कभी किसी धनी को सुना कहते हुए तुम्हारी गरीबी तुम्हें मुबारक हो, मेरी धनी मुझे मुबारक है। गरीबी बोलता है मेरे पास धन नहीं, तू धनी है तो तेरा धन तुझे मुबारक है। क्या मतलब है, उस सन्यासी को भी राज सिंहासन ही चाहिए, नहीं मिला चलो मेरी मिट्टी मुझे मुबारक हो। जब तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारे लिए राज सिंहासन मिट्टी अगर दोनों बराबर है तो सिंहासन को क्यों कंपेयर करते हो? कभी राजा कंपेयर करता है क्या मिट्टी के साथ राज सिंहासन को? क्योंकि उसके लिए ये पक्का है कि मिट्टी तो मिट्टी है, राज सिंहासन अच्छा है। तुम्हारे लिए भी यही पक्का है, राज सिंहासन ऊंचा है मिट्टी पतली है, और इसीलिए तुम्हारा रोना पर दूसरे रूप में निकलता है। एक बार दिल्ली में एक आर्य समाज में मैं बैठा था, रविवार को जैसे यहां सत्संग होता है, सारे दुनिया भर में हर आर्य समाज में रविवार को सत्संग होता है, मैं व्याख्यान देने गया था, तो वहां और एक जवान साधु 25-26 साल के या 30 साल के अंदर अंदर के एक साधु आए थे, उनका वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे जो वहां के व्यक्ति हैं, तो वो बता रहे थे देखिए कितने महान साधु हैं, उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग किया, छोड़ दिया और सन्यास बन गए, उन्होंने साधनाएं की, शास्त्र पढ़ा, कितने महान हैं। ऐसे उन्होंने काफी तारीफें की, उनके त्याग की, उनकी नौकरी छोड़ने की। वो जवान साधु थे, और जवान थे दिल से साधु थे इसीलिए ऑनेस्ट भी थे, और उन्होंने बोला जब
खुद की टाइम आई बोलने की। उन्होंने बोला, जो महाशय मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे पता नहीं वो मुझे गाली दे रहे थे कि मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि वो मेरी निंदा करते जा रहे हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना मूर्ख हूं, कितना बेवकूफ हूं कि IIT की डिग्री को छोड़ दिया, बड़ी बड़ी कंपनी की नौकरियां छोड़ दी, तो मैंने बहुत बड़ा एहसान किया, त्याग किया, संन्यास एक छोटा क्या इसका मतलब है, संन्यास बड़ी छोटी चीज है, IIT से पास करने वाली बहुत बड़ी चीज होती है, और जिसने छोड़ दिया कितने बड़ा त्याग किया। देवियों सज्जनों, मैं ये कहना चाहता हूं, मतलब मैं नहीं, वो व्यक्ति ने कहा कि मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि किसी छोटी चीज के लिए बड़े चीज की कुर्बान कर दूं। मेरे लिए जो मुझे बहुत बड़ा लगा वो मैंने लिया, जो मुझे बहुत छोटा लगा, घटिया लगा, मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे लगता है कि ये मेरा स्मार्ट डिसीजन था, मुझे लगता है मैं इस तारीफ करने वाले आदमी से ज्यादा स्मार्टर हूं, क्योंकि मुझे वो छोटा लगा इसीलिए छोड़ा, मैंने कोई एहसान नहीं किया किसी पर छोड़ करके, मुझे लगा ये मेरे लिए ज्यादा फायदे की चीज है, वो मेरे लिए ज्यादा कम फायदे की चीज है, इसीलिए प्लीज मेरी इस तरह की तारीफ मत करिए जिसमें मुझे स्टूपिड साबित करने की आपको मौका मिलता हो। पर ऐसा कम साधु मिलेंगे, ज्यादातर साधु तो आपके इधर उधर मंडराते हैं, उनके बैकग्राउंड में यही आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, जी वो डॉक्टर थे छोड़ दिया, इंजीनियर थे छोड़ दिया, करोड़पति थे छोड़ दिया। किसने कहा भाई छोड़ने के लिए, अगर छोड़ना इतना तारीफ, सिर्फ इसीलिए कि पब्लिक को पता चले मैंने क्या क्या छोड़ा। अगर तुम्हें छोड़ने की बीमारी अभी भी है, इसका मतलब तुम्हारे अगर अभी भी वो अटैचमेंट है, वो ओनरशिप है, वो तुम्हें लगता है कि मैं कुछ हूं और मैंने छोड़ा, जब छोड़ता है तो किसी छोटे के लिए जो बड़े चीज को छोड़ते हैं लोग उसको प्राउडली बोलते हैं, इसका मतलब तुम्हारे लिए संन्यास बड़ी छोटी चीज थी, वो बड़ी चीज थी जिसको तुम दुनिया भर में भुनाते रहते हो कि मैंने बड़ी चीज छोड़ी छोटी चीज के लिए, क्योंकि मैंने किसी पर एहसान किया। किस पर एहसान किया भाई? देवियों सज्जनों, ऊपर आप क्या बोलते रहते हो, जब करते रहते हो, तब करते रहते हो, आपके अंदर तो वो चलता रहता है जो आप सचमुच हो। और जिसका अंदर बदल गया वो जनक के तरह राजा है, किसी कंपनी का सीईओ है, किसी देश का प्रेसिडेंट है, अपने घर का बीवी बच्चे बच्चों का संभालने वाला पालने वाला बाप या मां है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक में तो वो आम आदमी की तरह रहेगा, पर वो अंदर से बिल्कुल शुद्ध निर्मल पवित्र होगा और वो मुक्ति का अधिकारी होगा। अगले श्लोक देखते हैं। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना कर्मयोगेन च परे सम परसीव द सेल्फ विद इन द सेल्फ बाय मेडिटेशन बाय द सेल्फ अदर्स बाय डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज दैट इज कॉल्ड सांख्य योग एंड स्टील अदर्स बाय द डिसिप्लिन एक्शन और कर्म योग। उस तत्व को रियलिटी को जानने के लिए, रियलिटी जो जैसा है उसको एज इट इज जानने के लिए, मैं जैसा दिखता हूं ऐसा नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं,
मेरी रियलिटी है कि मैं दो चीजों से बना हुआ हूं, एक आत्मा एक शरीर है। शरीर के भी अलग अलग लेयर है, उसमें ये ऊपर का शरीर है, उसके नीचे प्राण है, उसके नीचे माइंड है, उसके नीचे इंटेलेक्ट है। हर चीज को उसकी रियलिटी के साथ समझना, जानना, इसी को कहते हैं देखना। अलग अलग तरीके से लोग उसको जानते हैं। कुछ लोग ध्यान के द्वारा उसको जानते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा उसको जानते हैं, कुछ कर्मयोग के द्वारा जानते हैं। हर आदमी की अलग अलग टेम्परामेंट होता है, उसकी प्रकृति होती है। हर आदमी की अलग अलग स्वभाव होता है, उसकी इनहेरेंट नेचर होता है। अलग अलग एबिलिटी, उसका सामर्थ्य, उसकी क्षमता भी अलग अलग होता है। इसीलिए हर आदमी एक तरह से लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। आपको पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है, हर आदमी अपने अपनी एबिलिटी से, अपनी अपनी जो इनहेरेंट नेचर है उसके द्वारा पहुंचने की कोशिश करेगा। कोई पैदल जाकर पहुंचता है, कोई घोड़ों पर सवार होकर जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, कोई हेलीकॉप्टर से आता है, कोई देर से पहुंचता है, कोई बहुत जल्दी पहुंचता है, कोई टाइम लगा के पहुंचता है। सबको वहां पहुंचना होता है। कोई घूम फिर के पहुंचता है, कोई सीधा पहुंचता है। इसीलिए हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में ये बड़ी खूबसूरती यूनिक है, इस ब्यूटीफुल यूनिकनेस है। और वो ये है, कोई हर किसी के लिए एक रास्ता नहीं है। कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ना होने से हमारे यहां कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही जाना है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपकी नेचर कैसा है, इनहेरेंट नेचर कैसा है, आपकी एबिलिटी कैपेबिलिटी कितनी है किस चीज को हैंडल करने में, उस हिसाब से आप किसी भी रास्ते में जाइए। कुछ लोगों के लिए यह आसान होता है कि वो प्रेम में इतना डूब जाते हैं, इतने ज्यादा प्रेम में डूब जाते हैं, फिर अपना पराया भूल जाते हैं। वो जानवरों में खुद में भी फर्क भूल जाते हैं। वो हर प्राणी मात्र को प्यार करने लग जाते हैं। वो इंसान की सेवा करते करते उसके अंदर उस नारायण को देखने लग जाते हैं, वो नर के अंदर। जब आपको नर में नारायण दिखने लग जाए तो फिर आपके लिए ना कोई एड्स का बीमारी होगा, ना कोड का बीमार होगा। आप फिर सबकी सेवा में लग जाओगे, नारायण की सेवा समझ करके। वो कर्मयोगी है, वो भक्ति है, जो हर किसी में उसको देखता है, हर किसी को आलिंगन करता है, जो हर किसी की सेवा करता है ये समझ करके ये ईश्वर की सेवा है, वो कर्मयोगी बन जाता है। वो हर किसी में उस परमात्मा को दर्शन करता है, अनुभव करता है, रियलाइज करता है, वो ज्ञान योगी बन जाता है। तीनों में बेसिक अंतर सिर्फ इतना है, कौन कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पर तीनों का गोल एक जैसा ही होता है। बुद्धि जब आपकी सूक्ष्म होती जाती है, जितनी बुद्धि आपकी शटल होती जाएगी, आपके इंटेलेक्ट जितना शार्प होता जाएगा, उतना ज्यादा आप छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, शटल चीज को भी जान पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। हमारी जो ओवरऑल बुद्धि है ये बड़ा ग्रॉस लेवल के इंटेलेक्ट है, इसीलिए इससे जो कुछ हम कमाते हैं वो बड़े ग्रॉस लेवल का होता है। हम शरीर के ध्यान देते हैं, हम लोगों के शरीर देख करके जजमेंट करते हैं, जज करते हैं, हम बुद्धि से पैसा कमाते हैं, हम अपने बुद्धि से जो ज्ञान कमाते हैं वो ज्ञान भी पैसा कमाने के लिए होता है, बस दुनिया के सुख कमाने के लिए होता है। ओवरऑल हम लोगों को जो अंकते भी हैं, जो असेस भी करते हैं, अब हम आम नॉर्मली आदमी क्या अंकता है लोगों को देख करके कि ये बहुत पैसा वाला आदमी है तो बड़ा आदमी, ये बहुत ज्ञान वाला आदमी है तो बड़ा आदमी, ये बहुत पोस्ट, बड़े पोस्ट पर है तो बड़ा आदमी। भला आदमी की पोस्ट, उसकी नॉलेज, उसकी पैसा, उसकी रुतवा, उसके कपड़े, ये सब देख करके हम लोगों को अंकते हैं।
क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट बड़ा मोटी बुद्धि है, मोटी बुद्धि से यही आंकी जाती है। क्या पता कि तुम्हारे अंदर कोई दुबला पतला सा आदमी है, कमजोर आदमी है, ढीले ढाले कपड़े पहन के घूमता है, चप्पल पहनकर घूमता है, बाल पता नहीं कंघी किया कि नहीं, कपड़े प्रेस है कि नहीं है। जब आप उसकी रियलिटी पता लगता है कितना महान आदमी है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी बदल चुका है, खुद के अंदर कितने ज्ञान समाये रखा है, कितने करोड़ अरबों अरब रुपयों का मालिक है, पर दिखता है कितना सीधा साधा, बिल्कुल भिखमंगे की तरह दिखता है। जब आपको पता चलता है तब रियलाइज होता है। पर जनरली हम ऐसे लोगों को पहली नजर में दुत्कार देते हैं, छोटा समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ही मोटी है और जो एजुकेशन हमें मिलता है वो भी मोटी बुद्धि के लिए ही मिलता है। जितनी बुद्धि आपकी शार्प होगी, आपकी इंद्रियां उतनी छोटी छोटी चीजों को आसानी से पकड़ने लगेगा। आप बाजार में मेले में जाते हैं, खूब धूम धड़ाके म्यूजिक चलता है, बाजा बजता है, बहुत शोर शराबा होता है, और आपकी कान उस मोटे आवाज को सुनते सुनते इतना पक चुका होता है उसको छोटी छोटी आवाजें सुनाई नहीं देती है। पर जब आप अपनी बुद्धि को और शार्प करेंगे, अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से, अपने कर्म की महानता से, अपनी बुद्धि की निर्मलता से, प्यूरिफिकेशन से, आपको छोटी छोटी आवाज भी सुनाई देने लगेगा। कितना भी तेज आवाज हो रहा हो मेले में बाजे में, अगर मां का बच्चा कहीं रो रहा हो 500 मीटर 600 मीटर की दूर में, हो सकता है सैकड़ों बच्चे रो रहे हो, सैकड़ों ड्रम बज रहा हो, मां को समझ में आ जाता है कि मेरी बच्चे की आवाज है, क्योंकि उसका फोकस वहीं पर है। वो इतने बड़े जोर जोर के आवाज में भी उसकी कान की जो शार्पनेस है, जो फोकस है, वो उस पर होता है। कभी शांति में आप बैठने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? पता नहीं, पर करिए जरूर। अगर नहीं करते हैं, करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी आप अकेले बैठिए, मैं बार बार बोलता हूं, अकेले अकेले कमरे में जहां कुछ भी ना हो, ना टीवी हो, ना आपके पास सेलफोन हो, ना कोई आदमी हो, कुछ नहीं, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट होने का कुछ नहीं, बस आप अकेले बैठिए, कुछ करना धरना नहीं, चुपचाप बैठ जाइए, जैसा भी है 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, कभी शांत बैठिए, गुनगुनाइए भी नहीं, बस चुपचाप बैठिए। धीरे धीरे आपको देखेंगे, इवन अगर वो चीटी भी चलता है ना, उसकी आवाज भी आपको सुनाई देने लगेगा। वैसे नॉर्मल चीजों में आपको सुनाई नहीं देता है, और फिर आपको सुनाई देने लगेगा आपके अंदर की आवाज भी। कभी आप छोटे मोटे ध्यान से शुरू करिए, छोटे मोटे समय लगा के, बस चुप हो जाइए, कुछ मत करिए, शांत रहिए, आंख बंद करके अगर अंदर की और कुछ जाने की कोशिश कर सकते हैं बेटर है, कुछ नहीं कर सकते चुप हो जाइए, आपकी अंदर की आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। जितना व्यक्ति शांत होता जाएगा, वो अपने कान को उतना ज्यादा शार्प बनाता जाएगा, उसकी अंदर की आवाज उसको सुनाई देने लगेगी। और जो बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, उसके अंदर से इतने जोर जोर से आवाज सुनाई देने लगता है, वह जो नेचुरल साउंड है जिसको हम परम नाद कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं, जो ओम का एक रूप है, आपको अंदर से सुनाई देने लगेगा कि ओम का आवाज, बिना किसी झंझट के। जितना आप शांत होते जाएंगे, आपके अंदर से आवाज उठता जाएगा। जो लोग स्पेस में जाते हैं, स्पेस में महीनों गुजार करके आते हैं, उनको वो पूछिए उस स्पेस कितना शांत है, और उनको 24 घंटे यहां आवाज सुनाई देता है, बड़े बड़े आवाज सुनाई देता है। पर अब आपको भी सुनाई देगा, इसी आर्य समाज में सुनाई देगा, बाहर सुनाई देगा। थोड़ी देर के लिए पूरी तरह शांत हो जाइए, कोई आवाज कहीं से ना आने लगे, तो आपकी सांसों के धड़कन इतने जोर जोर से आपको सुनाई देगा, आपको लगेगा कि यह सबसे बड़ा ट्रबल मेकर है। किसी ड्रम बजने से भी कम आवाज आपकी सांसों की नहीं सुनाई देगी। पर हम इतने मोटे मोटे आवाजों में फंस चुके हैं, हमारे कान को अब आदत नहीं है छोटे छोटे आवाज को सुनने के लिए। हमारे आंखें भी बड़ी बड़ी चीजें देखने की आदत बन चुकी है, इसीलिए हमारी बुद्धि छोटी छोटी चीजों को देखने की कोशिश भी नहीं करती है। पर कभी कभी दुनिया के बड़े बड़े चाक चौबंद में से, चकाचौंध दुनिया में से भी आपको बहुत छोटी छोटी चीजें अगर देख सकते हैं, अगर आपने मन को शांत रखें, दुनिया से थोड़ी देर के लिए हटाएं। जितना आप मोटी चीजों से अपने इंद्रियों को काम करेंगे, आपका इंटेलेक्ट उतना शार्प होता जाएगा, आप छोटी छोटी चीजों को उतनी जल्दी पकड़ पाएंगे। कभी कभी आप देखते हैं कोई भी काम आप बड़े जल्दी में करते हैं, हड़बड़ाहट में करते हैं, आपके दरवाजे की ताला भी आप खोलने की कोशिश करते हैं डर के मारे, घबराहट में, जल्दी जल्दी में, तो आपकी चाबी हिलने लगती है, आप ठीक से डाल नहीं पाते हो। उसके लिए भी शांत चाहिए। व्यक्ति जितना शांत होता जाएगा उसकी बुद्धि में उतनी शार्पनेस उतनी आती जाएगी, छोटी छोटी चीजों को बारीकी से ढूंढ पाएंगे। कभी आपने देखा है कि आपकी सुई गिर जाती है पतली पतली, कोई छोटी सी चीजें गिर जाती है आपसे ढूंढने पर नहीं मिलता, क्योंकि उस समय आप बड़े बेचैन रहते हैं, आपकी आपकी पूरी इंटेलेक्ट माइंड सेंसेस बड़े भागे दौड़ में रहते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को देखने के आदि हो चुके हैं। पर जिस दिन आप बहुत शांत हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, तब आसानी से आपको दिखेगा। तो व्यक्ति जितना शांत होगा, वो शांत होने की तरीका आप ध्यान से हो सकते हैं, कर्मयोग से हो सकते हैं, ज्ञान योग से हो सकते हैं, वो शांत होने की तरीका है कोई भी हो सकता है, पर वांश आप शांत होते हैं, आप अपनी बुद्धि को अगर सूक्ष्म बना पाते हैं तो वो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आप उस कभी ना एहसास करने वाले स्पर्श को भी जान पाएंगे, कभी ना एहसास होने वाली चीजों को पहली बार आप देख पाएंगे, कभी ना सुने हुए चीज को आप सुन पाएंगे, आपके अंदर की भी आवाज को भी, कभी ना सूंघने वाले गंध को भी आप उस दिन स्मेल कर पाएंगे, सूंघ पाएंगे, कभी ना स्वाद ना मिलने वाले चीजों का स्वाद भी आपको मिलने लगेगा। पर यह तभी होगा, उसके तीन अलग अलग रास्ते हैं। या तो आप भक्ति से जाइए, दिल से, जहां पूरी तरह पिघल जाते हैं किसी के लिए, सातु परम प्रेम रूपा, जब आपके अंदर इतना प्रेम पैदा हो जाता है जिसमें कोई कोई इंप्यूरिटी नहीं है, कोई मैलापन नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। मैलापन क्या है प्यार में? जब आप कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं प्यार से, जब आप एक्सचेंज करना चाहते हैं प्यार, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो अब ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम भी मुझसे प्यार करो। अब प्यार कोई जबरदस्ती थोड़े ही लिया जाता है, पर हम बेवकूफ हैं, हमारी मोटी बुद्धि है, हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम जरूर मुझसे प्यार करोगे, नहीं करोगे तो हंगामा होता है, झगड़ा होता है। अब कितनी मोटी बुद्धि की बात है, पति पत्नी लड़ते रहते हैं, भाई बहन लड़ते रहते हैं, एक दूसरे दोस्त एक दूसरे, क्यों भाई तुम मेरे से प्यार क्यों नहीं करते? अब करना थोड़े ही होता है, वो तो आता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं। परम प्रेम जहां आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप करते जाते हो, जब उस परमेश्वर के प्रति, उस आत्मा के प्रति आपके अंदर इतना भाव पैदा हो जाए, आपकी कोई इच्छा ही बच्चे नहीं है, फिर आपको वो कीड़े में, पशु में, पक्षी में, इंसान में, दुश्मन में, दोस्तों में, सब वही दिखाई देने लगे। तो इसका मतलब आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई। कल तक जो आपको दुश्मन दिखता था, कल तक जो आपको पक्षी दिखता था, जानवर दिखता था, आज उसके अंदर आप उस नारायण को अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि अब सूक्ष्म होती जा रही है। वो बुद्धि सूक्ष्म हुई आपके परम प्रेम के कारण, उसको भक्ति योग कहते हैं। जिसको इस तरह के भक्त प्रेम नहीं कर सकता, वो दूसरा मार्ग अपनाता है, वो मेडिटेशन करता है, अपने इंद्रियों को रेगुलेट करता है, अपने मन को कंट्रोल करता है, यम नियम साधनाओं के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा, और उसके द्वारा वो अपने बुद्धि को निर्मल करता है। और जब वो एहसास कर पाता है, जब जिस दिन उसको रियलाइज होता है, मैं वो नहीं हूं जिसको मैं समझ रहा था, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये कान नहीं, नाक नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, जिस दिन उसको वो एहसास हो जाए, उसको ये रियलाइज हो जाए मैं कौन हूं, फिर वो अपने पड़ोसी में भी उसको देखेगा, फिर वही कुत्ते में भी देखेगा, वो वही दुश्मन में भी देखेगा, जो भक्ति मार्ग से पहुंचकर जहां पहुंचा ज्ञान से भी वहीं पहुंचेगा। जिसको ये नहीं कर सकता, जिसकी टेम्परामेंट ऐसा नहीं है, जिसकी इनहेरेंट नेचर ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ शरीर कर्मों इंद्रियों को नियंत्रित कर सके, मन को नियंत्रित कर सके या उस प्रेम में बह जाए, वो कहता है नहीं, मेरे अंदर रजोगुण ज्यादा है, मुझे कुछ करना है, मैं शांत नहीं बैठ सकता। पर वो करता है, दुनिया के लिए करता है, वो उस आदमी के लिए भी करता है जिसके साथ उसका कोई लेन देन नहीं, ये सोच के कि उसके अंदर भी इस नारायण का स्वरूप है, वो करता जाता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि इसको करने से मुझे क्या फायदा होगा, उसको हेल्प करने से मुझे क्या फायदा होगा, उसका भला करने से मुझे क्या फायदा होगा, ये सोचे बिना वो करता जाता है, सबकी सेवा करता जाता है, ये कर्मयोगी हो जाता है। तो आप भक्ति से जाते हैं, ज्ञान से जाते हैं या कर्म से जाते हैं, पहुंचते वहीं पर जहां आपको सब में नारायण दिखता है, पशु में दिखता है, खुद में भी दिखता है, दुश्मन भी दिखता है, शत्रु में दिखता है, पर पहुंचना सबको यही होता है, रास्ता अलग अलग होता है पर पहुंचना सबको यहीं पर होता है। अगले श्लोक की व्याख्या अगले बार करेंगे, यहीं पर यहीं विराम देते हैं। ओम शांति, शांति।